नहीं नहीं नहीं, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा, नाम रूप में नहीं फंसूंगा, शिव बाबा को याद करूंगा।
शाबाश।
माया की छाया से बचना जरा, इसमें विकारों का जादू भरा।
ओम शांति। तो हे संतों, माया महाठगनी मैं जानी, राजा के घर रानी और पंडा के घर पानी। तो महाठगनी माया की सीरीज का आज का 20वां दिवस है। तो इसमें 20वें नंबर पे जो टॉपिक है वो उसका है राई को पहाड़ बनाना, राई को पहाड़ बनाना। लेकिन इस टॉपिक को आगे पढ़ाने से पहले आप सबके बीच में माया से रिलेटेड एक कविता सुनाना चाहूँगा। उससे पहले तो कविता है इससे, हे रावण की माया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया, अनेक रूप रचकर सबके जीवन में समाया, अनेक रूप रचकर सबके जीवन में समाया, कभी उकसाया कभी भरमाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया, रोब रोस और दोष दिखाया, रोब रोस और दोष दिखाया, शोक चिंता और अफसोस कराया, शोक चिंता और अफसोस कराया, दुख दर्द और श्राप दिलाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया। नाम रूप की बीमारी लाती है बेचारी, नाम रूप की बीमारी लाती है बेचारी, भ्रष्ट पतित और बनाती है भिखारी, भ्रष्ट पतित और बनाती है भिखारी, सुकून के बहाने धोखा दिलाया, सुकून के बहाने धोखा दिलाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया, कभी घूंघट की आड़ में, कभी शेर की दहाड़ में, बना करके राई का पहाड़ घर दिया उजाड़, समझ का शेर हो गया ढेर, इम्तिहान की घड़ी में मैंने इल्जाम ही लगाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया। रंग बहुरंगी रूप रूहानी, पल पल में तेरी बदले कहानी, रूप बहुरंगी रूप रूहानी, पल पल में तेरी बदले कहानी, कभी नादानी कभी बेईमानी, कभी नादानी कभी बेईमानी, अमृत के वास्ते मिल गया पानी, अमृत के वास्ते मिल गया पानी, अथाह अपार अनंत दर्द दिलाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया। खुदा की कश्ती और मौलाई मस्ती, कहाँ पे हम, जहाँ खुदा की कश्ती मौलाई मस्ती, सुख शांति संपत्ति सब थी सस्ती, बेमोल, इतना सस्ता कि बेमोल, जिसका कोई मोल नहीं और है भी कैसे अनमोल। तो खुदा की कश्ती और मौलाई मस्ती, सुख शांति और संपत्ति सब थी सस्ती, प्रभु मिलन का मेला वंडरफुल था खेला, प्रभु मिलन का मेला वंडरफुल था खेला, जब रहबर को छोड़ राही हुआ अकेला, जब रहबर को छोड़ राही हुआ अकेला, वक्त की आड़ में चक्रव्यूह में फंसाया, हे रावण की माया, कभी धूप कभी छाया। ओम शांति। तो ये है रावण की, रावण माया की कुछ कहानियां। तो राई को पहाड़ बनाना, आप सब जानते हैं, सबने राई देखी है, राई देखी है। तो राई कैसे होती है? छोटी सी दाना, गोल, जिसका ना तो सिर है ना तो पैर है। अब जिसका ना तो सिर है ना तो पैर है, और देखने में भी कैसी है, गोल गोल है, चिकनी और चुपड़ी है कहना चाहिए। ऊपर से तो चिकनी है, लेकिन टूटती है तो क्या होती है, उसमें चिपचिपा तेल निकलता है ना, तो चिकनी और चुपड़ी भी है। तो राई का पहाड़ बनाना अर्थात ये संभव है, संभव है, बना देते हैं। तो ये है माया का एक रूप, लेकिन ये भी क्या है, अनरियल रूप है, रियल नहीं है, वो सिर्फ बनी बनाई रूप होती है। तो राई का कभी पहाड़ वैसे बनता नहीं है, लेकिन इसकी अगर देखें अर्थ तो चार अर्थ निकलते हैं राई का पहाड़ बनाने में। पहला, पहला क्या, जो बातें, बात कुछ और है लेकिन लोगों के बीच वो बात कुछ और तरीके से फैल रही है, तो उसको कहें, एक शब्दों में कहें अफवाह, अफवाह के रूप में जो फैलती है ना। अगर बात कही जा रही है आम की और लोगों के बीच में बातें फैल रही है कद्दू की, तो क्या होगा, है ना, बात कितनी छोटी है लेकिन वो बड़ा से बड़ा बना करके, उसमें और बढ़ा चढ़ा करके, मिर्ची मसाला डाल करके, तोड़ मरोड़ करके, है ना, और उसमें क्या कहें, और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी उसमें बढ़ा करके बताना, ये सब क्या है, पहाड़ बनाने जैसा है। बात तो उतनी थी नहीं, लेकिन बात तो उतना बढ़ा दिया गया। तो यह अफवाह की रीति से जो फैलता है उसका ये पहला मीनिंग। दूसरा, दूसरा, जब कोई कार्य बहुत बड़ा है या असंभव है, कहें जो कार्य कभी संभव हो ही नहीं सकता, नामुमकिन है, जैसे कि कोई कहे कि भाई आसमान से तारे तोड़ के ले आऊं, क्या संभव है, ये संभव है, नहीं है। तो कहते हैं ना, क्या राई का पहाड़ बनाने चला है, हो तो पाएगा नहीं, संभव तो होगा नहीं। तो असंभव कार्य है लेकिन फिर भी करते हैं, तो भी एक तरह का क्या है, ये माया का रूप है। और अगर तीसरा देखें तो तीसरा एक है अंश से वंश, जो बाबा कहते हैं ना, अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। तो राई कितनी छोटी होती है और पहाड़ कितनी बड़ी हो जाती है, बड़ी होती है ना, तो इतना बड़ा पहाड़ और इतनी छोटी सी राई, दोनों में कितना अंतर होता है ना। तो ये है तीसरा, कि अंश से वंश की उत्पत्ति होती है। चौथा, चौथा जो है ये एक तरह से देखें तो उसमें इकोनॉमी शब्द का अर्थ मीनिंग उसमें निकलता है, इकोनॉमी है ना, जिसको दूसरे मुहावरों के अर्थ में कहते हैं बूंद बूंद से तालाब, फूरी फूरी से तालाब भरता है। यानी हम एक एक दाने इकट्ठा करें, अगर एक एक रुपए भी इकट्ठा करें तो एक दिन वो पद्मपति करोड़पति बन सकते हैं। तो ये चार हैं, लेकिन इसमें माया का जो रूप है वो पहला दो है। तो पहले में आते हैं अफवाह, कि अफवाह कैसे हो फैलता है या कैसे फैलाते हैं, लेकिन ये फैलाने का कारण क्या है, क्या है इसका कारण, हाँ, एक तो दूसरे को गिराना और अपने आप को अच्छा कहलाना या श्रेष्ठ लोगों के नज़रों में साबित होना या अच्छा दिखाना या अच्छा बना रहना। और क्यों करते हैं ये सब, कई सारे कारण हैं इसमें, हाँ, किसी को खुशी की अनुभूति होती है जब किसी की निंदा करते हैं, ग्लानी करते हैं, उसकी बहुत ही बढ़ा चढ़ा करके अगर क्या कहें, उसकी बेइज्जती करते हैं तो भी क्या होता है, किसी को खुशी होती है, जिसको क्या कहते हैं, निंदा रस, दूसरों की गलानी करने का कर करके खुद को सुकून का अनुभव करते हैं। और क्यों करते हैं ये, हाँ, अंदर में खाली है, अंदर में खाली है तो क्या करेंगे, कुछ तो करेंगे ना, तो व्यर्थ में ही जाएंगे, ज्यादा राई का पहाड़ बनाने में लगे रहेंगे। दूसरा, उसमें और क्या है, ईर्ष्या होती है। अगर कोई आगे बढ़ रहा है, कोई आगे सफल हो रहा है, तो उसकी सफलता को देख करके ईर्ष्या होती है, तो उसको गिराने के लिए अनेक प्रकार के बहाने ढूंढते हैं, गिराने के लिए अनेक प्रकार के बहाने बनाते हैं, अनेक प्रकार के इल्जाम लगाते हैं, कई तरह की उनकी कमियां लोगों के सामने रखते हैं। और क्यों करते हैं ये सब? किसी के पुराने संस्कार होते हैं, ये संस्कार होते हैं। अब उस संस्कारों के वशीभूत है, आदत के वशीभूत है, तो क्या करेंगे? वही करेंगे। और क्यों करते हैं, क्यों करते हैं? हाँ, कई बार तो पिछले हिसाब किताब होते हैं, इसकी वजह से भी होता है। और बदला लेने के लिए, बदले की भाव है अंदर में, वो तो हो गया, गिरा दिए उसको पहले। तो ये सारे कारण है, इसके पीछे भी और भी बहुत सारे कारण निकल सकते हैं राई का पहाड़ बनाने के पीछे। लेकिन अब इसके देखते हैं कि इसके कुछ साधन हैं हमारे सामने, उसके लिए अवेलेबल साधन हैं, बहुत सहज साधन भी हैं ये सब करने के लिए। तो ऐसे 10 से भी ऊपर साधन हैं, उसमें से पहला है सोशल मीडिया, जिसके द्वारा अफवाह फैलाना कितना सहज हो जाता है। किसी को भी नीचे गिराना है तो सहज साधन क्या है, बस उसकी इधर उधर की वीडियो बना के डाल दीजिए, उसके बारे में कुछ इधर उधर का लिख करके डाल दीजिए, लोगों के बीच में ऑटोमेटिक फैल जाएगा। अब आजकल लोगों की तो आदत होती है, उसको अच्छे से देखेंगे नहीं, समझेंगे भी नहीं, लेकिन फटाफट फॉरवर्ड करेंगे। एक के पास दूसरे से गया, और दूसरे से चार के पास गया, चार से 16 के पास गया। और उसमें कट पेस्ट भी कर देते हैं, है ना, एडिशन, कुछ डिलीशन भी कर देंगे, नहीं डिलीट कर देंगे, और कुछ ऐड भी कर देंगे, और कुछ का कुछ भी कर देंगे। तो ये है सोशल मीडिया में। और कौन कौन से हैं सोशल मीडिया में? बहुत सारे हैं, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, टेलीग्राम है, न्यूज़ है, टीवी चैनल्स हैं। माइक है। तो ये सारी क्या अफवाह फैलाने के साधन हैं। हाँ, संगठन, जब संगठन में बैठते हैं तो क्या होती है, कुछ न कुछ चर्चा चलती है, है ना। गांव में होती है तो क्या करते हैं, चौपाल चलता है, चौपाल आपस में बैठते हैं, उसको चौपाल बोलते हैं, या यूं कहें मीटिंग, गैदरिंग। तो इस सब में क्या होती है, कोई ना कोई चर्चा चलती है। तो इस बीच में अगर कोई भी, अगर छोटी सी भी बात के विषय में सबके अनेक मत होते हैं, और अनेक मतों का जो सार निकलता है उसमें बहुत सारी बातें बेकार हो जाती है, पूरा सारी बेकार हो जाता है। जैसे पहले जगदीश भाई भी एक अनुभव सुनाते हैं ना, कि बाबा ने जब लिटरेचर लिखने के लिए कहा, तो जगदीश भाई ने जो ज्ञान के मुख्य सार है उन्होंने कुछ पेज में लिखे, फिर बाबा ने कहा कि नहीं, इसको सभी बड़ी बहनों से वेरीफाई करो, है ना। अब पहले मम्मा के पास गए, वहाँ वेरीफाई कराए, भाई ये ठीक नहीं है, ये करना चाहिए, इसमें यहाँ ये एडिशन होना चाहिए, इसमें ये ठीक नहीं है, ये लाइन चेंज करने, हाँ ठीक है, वहाँ चेंज किए। फिर दूसरी बहन के पास गए तो बोले ये ठीक नहीं है, इसको चेंज करो। तीसरे के पास गए तो फिर उन्होंने कुछ और चेंज करवा दी, चौथे के पास गए तो कुछ और चेंज करा दिए। अब लास्ट में नतीजा क्या हुआ, उन्होंने जो लिखा था ओरिजिनली वो तो पूरा ही चेंज हो गया, पूरा ही चेंज हो गया। तो अब क्या कहेंगे, पहले जो बात थी, जो बात लिखी गई थी वो रही नहीं, मतलब बदल गई पूरी की पूरी बात ही। तो इस तरह से है कि माया का ये जो संस्कार है, एक रूप है जो बात कुछ और फैला देते हैं, कुछ और। तो यह अफवाह के रूप में फैलता है सबसे ज्यादा। और इससे बचने के लिए फिर क्या करें, अगर हमारे नाम से कोई ऐसा कुछ फैलाया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है, हमने कुछ ऐसा की नहीं है। तो इस तरह से बात होती है, बात कुछ की कुछ होती है। अब कुछ का संस्कार ही होता है तो उसमें क्या कर सकते हैं अपन, उसका एक ही तरीका है, चुप रहने। जब समय आएगा तब खुद ही ठीक हो जाता है वो। बस आगे के लिए हम उससे कुछ सीख लेते हैं, सीखने का भाव है, बदलने का भाव है, तो सब कुछ सही हो जाता है। फिर आपस में टकराएंगे नहीं, बदल जाएंगे, तो उससे अनुभव भी बढ़ता है, लोगों से सीखते भी हैं और संस्कार भी मिलता है। और क्या करना चाहिए, और क्या करें अगर ऐसा कुछ हो तो? हमें तो कुछ करना ही नहीं है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो करना है वो तो कर रहे हैं, उनको करने दीजिए, छोड़ दीजिए। इसलिए बाबा क्या कहते हैं, छोड़ो तो छूटो। अगर इन सबसे माया के इस रूपों से छूटना है, माया के भिन्न भिन्न रूपों से छूटना है, तो क्या करना पड़ेगा? उस बात को ही छोड़ दो, उस विषय को ही छोड़ दो, उस सब्जेक्ट को ही छोड़ दो, तो फिर उसे छूट जाएंगे, क्योंकि पकड़ते हम खुद हैं, माया के वश होते हम खुद हैं। ना समझ होकर के हम उसको पकड़ लेते हैं कि ये क्या, मेरी निंदा, मेरी ग्लानी, मेरे साथ ऐसे, और भी ये बात तो ऐसे हमने की नहीं थी, लेकिन क्या करेंगे। इसलिए छोड़ो तो छूटो। दूसरी एक और घटना याद आती है, घटना बाहर की है, क्योंकि कहीं ना कहीं इधर उधर आना जाना सेवा के हिसाब से होता रहता है। तो रास्ते में जा रहे थे, एक गाड़ी वाला सामने से आता है, अच्छी खासी कार, महंगी कार लेकर के आ रहा था। हम लोग जा रहे थे, बीच में बस थी, ओवरटेक करके आगे जैसी बढ़े वो सामने आ गया, आ गया तो फिर वो सामने लाके फिर खड़ा कर दिया गाड़ी, यानी कि थोड़ा सा टच होने में बच गई, फिर भी बच गई, बात तो ऐसी कुछ थी नहीं। लेकिन वो व्यक्ति फिर उतर के सुनाने लगा, क्या तुम्हें पता नहीं है सामने गाड़ी आ रही है? मैं तो चुपचाप बैठा था, चलाने वाला तो कोई और था, पर सुन रहा था मैं बस, है ना। इतनी महंगी गाड़ी है, तुम्हें पता है कभी भी कहीं भी कुछ भी करते हो, तुम्हें चलाने नहीं आता है, तुम्हें लाइसेंस किसने दी? उसको अक्कल नहीं था क्या, क्यों बना के दे दिया, टेस्ट लेना चाहिए था। ऐसे वैसे बहुत सारी बातें उन्हें सुनाने लगी, अगर अभी हो गया होता तो तुम पैसा देता, ये वो बहुत सारी बातें। उसके आगे पीछे और भी लंबी चौड़ी लाइनें फिर लग गई, लेकिन हम क्या करें, कुछ नहीं भाई, छोड़ो तो छूटो, चुप। क्योंकि राई की पहाड़ बनाने के लिए लोग खड़े हैं, अगर आपका एक नुक्स देखे बस चालू हो जाएंगे। इतनी सारी अगर दूसरी तरीके से देखें तो राई का पहाड़ बनाना दूसरे में जो था वो कि नामुमकिन कार्य को भी मुमकिन करने के लिए करते हैं, उसके लिए भी यही बात कही जाती है। लेकिन अब उसमें पॉजिटिव वाले में अगर आए तो देखें कि तीसरी वाली पॉइंट, यानी कि अंश से वंश की उत्पत्ति, अर्थात छोटी सी छोटी अगर गलती है, छोटी सी छोटी बात है, अगर कोई माया के बहुत ही अंश मात्र संस्कार में दबे पड़े हुए हैं, कोई भी कोई ना कोई विकार का जो संस्कार है, अगर अंश मात्र भी है तो वो एक दिन वंश में कभी भी समय के अनुसार, वक्त के अनुसार वो हो सकता है, हमारे जीवन में वो रूप ले सकती है। जैसे बीज झाड़ में रूपांतरित हो सकता है, वैसे वो संस्कार रूपी जो बीज पड़ा है वो कभी भी निकल सकता है। इसके लिए अभी एक मिनट हम साइलेंस में होकर के अपने आप से चेक करेंगे, सभी अलर्ट हो जाएंगे। सभी मस्तक सिंहासन पे बैठ जाएं, बाकी सारी बातें छोड़ के, सारे विचार छोड़ दें। निराकार आत्मा मस्तक सिंहासन पे, शुद्ध पवित्र निराकार ज्योति बिंदु आत्मा, सतो प्रधान आत्मा, मन बुद्धि की मालिक, संस्कारों के भी मालिक, अपने संस्कारों को देखें सारे दिन की दिनचर्या में, कर्म में, भाव में, संकल्पों में, भावनाओं में, कहीं ना कहीं, कहीं कोई माया के संस्कार अंश मात्र दिखाई तो नहीं देते, कार्य में तो नहीं आते, फीलिंग्स में तो नहीं आते, थोड़ा थोड़ा, अगर है तो आज से उसे खत्म करने, समाप्त कर देने, परिवर्तन कर देने, चेक करें और चेंज। आज सारे दिन में कहीं न कहीं छोटी बात को बड़ा बनाने के आदत तो नहीं है, छोटी बात को ज्यादा से ज्यादा सोचने की आदत तो नहीं है, अगर है तो चेंज करें। ओम शांति। तो कहीं ना कहीं ये बीज पड़ा रहता है। अब तीसरा देखें कि ये नहीं, इकोनॉमी के रूप में, जैसे बाबा बिंदु है तो वैसे बाबा ने क्या कहा है, अगर एक के आगे बिंदु लगाओगे तो वो 10 हो जाएगा, फिर 10 के आगे बिंदु लगाएंगे तो 100 हो जाएगा, 100 के आगे बिंदु लगाएंगे तो 1000 हो जाएंगे। ऐसे ही ये इसका फार्मूला है। अब इस फार्मूले से हम एक एक चीजों को इकट्ठा करें, हमारे पास बहुत सारे खजाने हैं, इतनी सारी खजाने हैं, जैसे ज्ञान का खजाना है। अगर ज्ञान का खजाना है तो ज्ञान की एक एक रत्नों को, एक एक लाइन्स को, क्योंकि ये ज्ञान की जो एक एक शब्द है, एक एक लाइन है, वो बीज की तरह है। अगर इन बीजों को जितना हम अपने जीवन में लाएंगे, धारण करेंगे, स्वरूप में लाएंगे, तो क्या होगा, वृद्धि को प्राप्त करेगी। और ये एक ज्ञान की लाइन को अगर आपने, एक शब्द को अगर धारण किया, तो इस एक के साथ में अनेक ज्ञान के पॉइंट्स ऑटोमेटिक जुड़े हुए होते हैं। ज्ञान का सारा जो विस्तार है और एक के साथ जुड़ा है, हर एक की जो शब्द हैं, हर एक शब्द एक दूसरे से जुड़े हैं। तो ज्ञान के, अगर मास्टर ज्ञान का सागर बनना चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, शुरुआती दौर पे ज्ञान के एक एक रत्नों को इकट्ठा करना पड़ेगा। जैसे राई का पहाड़ बनाने के लिए भी क्या करना पड़ेगा, अगर पहाड़ तो एक ही बार बनेगा नहीं, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक एक को इकट्ठा करना पड़ेगा। इकट्ठा करते 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 फिर जा करके पहाड़ की तरह से इकट्ठा कर देंगे, अर्थात बहुत सारा हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से अगर ज्ञान में अगर आगे इकट्ठा करके मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, तो एक ज्ञान की एक एक रत्नों का वैल्यू समझना है, उसको अपने जीवन में लाना होगा, धारण करना होगा। जब तक एक एक का महत्व नहीं रखेंगे, तब तक फिर सबका फिर महत्व नहीं रख सकते। अगर आप एक ही बार चाहें कि पूरी की पूरी हमारे जीवन में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। अगर कहें मुरली की पूरी बातें एक ही दिन में जीवन में आ जाए, तो ये संभव नहीं है। क्योंकि उसमें कोई किसी को कोई बात अच्छी लगती है, किसी को कोई बात अच्छी लगती है, तो जिसको जो अच्छा लगता है, क्योंकि हर एक का स्वभाव, हर एक के संस्कार के अनुसार, हर एक की जो धारणा के अनुसार, जो स्थिति के अनुसार जो कुछ भी धारण करते हैं वो हर एक के लिए अपना अपना होता है। तो वो एक एक को इकट्ठा करते करते फिर जा करके मास्टर ज्ञान का सागर बन सकते हैं। वैसी बाबा ने क्या कहा, गुणों के लिए, एक एक गुणों या कोई भी एक गुण का मास्टर बनो, अर्थात उस एक को धारण करने के लिए उस पर लग जाओ, टूट पड़ो, है ना। अगर एक गुण को धारण करने के लिए उसमें लग जाएंगे पूरी तरह से, विषों नाखूनों का जोर लगा करके, तो उसके साथ में जो बाकी सारे गुण हैं वो सारे गुण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे एक को धारण करेंगे उसके बाद दूसरा का आपको पता चल जाएगा, तीसरे का पता चल जाएगा, चौथे का पता चल जाएगा, फिर ऐसे धारण करते जाएंगे तो मास्टर क्या बन जाएंगे, गुणों के सागर बन जाएंगे, गुणवान बन जाएंगे। वैसे ही क्या करेंगे, और दूसरों की फिर एक एक विशेषताओं को देखना शुरू करें, क्योंकि हर एक में गुण है, विशेषताएं हैं, है ना। इसके लिए बाबा ने एक बार कहा था कि तुम सब कौन हो, गुण चोर, गुणों की चोरी करो। अगर चोरी ही करनी है तो गुणों की चोरी करो, तो सबसे गुण चोरी करते करते क्या बनेंगे, गुणवान बन जाएंगे, गुणों के सागर बन जाएंगे। और क्या, अगर आपको मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, अगर शक्तियां अपने पास इकट्ठा करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एक एक शक्ति के विषय में, एक एक शक्ति को अपने जीवन में धारण करना पड़ेगा। क्योंकि ज्ञान की एक एक पॉइंट्स जो है वो एक एक शक्ति के रूप में, एक एक ऊर्जा है, ये एनर्जी है, पावर है, जिसको अगर आप रिसीव कर लेंगे तब कहेंगे धारण करना। मतलब क्या, अगर ज्ञान की एक पॉइंट्स को धारण किए, अगर मास्टर सर्वशक्तिवान एक शब्द है उस शब्द का, लेकिन वो शब्द नहीं है, वर्ड्स नहीं है, वो एक एनर्जी है। अगर आप उस एनर्जी तक पहुंच गए तो समझ लो आपके जीवन में धारण हो गया। तो ऐसी एक एक शक्तियां जो है वो एक संकल्प के रूप में है, एक शब्द के रूप में है, एक लाइन के रूप में है, जिसको हम एक स्वमान भी कहते हैं, स्वमान के रूप में है, स्मृति के रूप में है। लेकिन जब हम उसको अपने जीवन में धारण कर लेते हैं, अर्थात उसको स्वरूप में ले आते हैं, उसके अनुभव में उतर जाते हैं, तो हमारे जीवन में आ जाता है। तो वैसी हर एक जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों को, एक एक शक्ति को अनुभव में लाते जाएंगे तो मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाएंगे। वैसी आगे अगर देखें, समय के एक एक सेकेंड को सफल करेंगे तो क्या होगा, समय का खजाना सफल होता जाएगा। फिर निरंतर योगी, सदा के योगी, सहज योगी स्वतः बन जाएंगे। फिर श्वासोश्वास क्या होगा, अजपजाप चलता रहेगा। मन मनाभाव की स्थिति स्वतः बन जाएगी, मध्याजी भाव की स्थिति स्वतः बन जाएगी, क्योंकि मन मनाभाव की स्थिति में स्थित हो गए तो फिर मध्याजी भाव के जो स्वभाव संस्कार हैं वो ओरिजिनल आत्मा में स्वतः इमर्ज होने लगेंगे, स्वतः ही जीवन में आने लगेगी। और क्या होगा, दिन प्रतिदिन करते हुए फिर ये जो पुराने स्वभाव संस्कार हैं सब चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे, और हम धीरे 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 फिर क्या होगा, दैवी स्वभाव, दैवी संस्कार, दैवी स्वरूप, दैवी मूरत, इसका पहाड़ खड़ा हो जाएगा। पहाड़ कहें या स्वरूप कहें या उसके हम नजदीक पहुंचते जाएंगे। अगर एक यात्रा है, याद अगर एक यात्रा है, तो इस यात्रा का जो एक एक कदम है एक राई की तरह है, तो एक एक कदम बढ़ाते बढ़ाते फिर हम इस यात्रा में मंजिल की ओर पहुंचते जाएंगे। तो इस तरह से कहें तो राई का पहाड़ बन जाएगा। जैसे क्या कहते हैं, अगर सबको राजी करना है तो सबको राजी एक एक को नहीं कर सकते, बड़ा मुश्किल है, क्योंकि एक एक के पीछे जा नहीं सकते, और एक एक के पीछे जाएंगे तो फिर उतना समय, संकल्प, एनर्जी कितना देना पड़ेगा, है ना, और सुनना भी पड़ेगा, सबसे पहले तो सुनना ही पड़ेगा, बिना सुने कोई आपका सुनेगा नहीं। जब तक उनका आप पहले नहीं सुनोगे तब तक वो आपका सुनेंगे नहीं। अगर सुन भी लिए, चलो जबरदस्ती से अगर सुन भी लिए तो उसको जीवन में लाएंगे नहीं। क्यों नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे? कई हैं उस जिनको तो लाना ही नहीं है, बदलना ही नहीं है, वो अलग तरह के हैं। लेकिन अगर जिनको लाना भी है लेकिन पहले उनकी बात को सुनो तो उनके साथ आपका कम्युनिकेशन बन जाएगा। पहले वो अपने को खाली कर लिए, अब उस खाली डब्बे में आप जो भी डालोगे वो उसमें भर जाएगा। तो अगर जिसको परिवर्तन करना है तो पहले वो सुनाएगा, उसको सुन लेने चुपचाप, फिर जो आप कहेंगे जो कुछ भी बोलेंगे वो स्वीकार कर लेंगे और बदल जाएंगे, है ना। तो इस तरह से परिवर्तन होता जाएगा। लेकिन इससे पहले अगर एक बाप को भी राजी कर लें तो सब राजी हो जाएगा। और जब सब राजी हो जाएंगे, लेकिन बाप राजी हो गया तो फिर सब राजी हो जाएंगे, अगर नहीं भी हुए तो फिर नहीं हुए तो फिर वही चीज है, नहीं हुए और बाबा ने कह दी तो फिर कुछ परसेंट मार्जिन छूट भी मिल जाती है, कुछ बाप पर छोड़ देने होते हैं। तो इस तरह से होता जाएगा। तो राई का पहाड़ एक आधा है, लेकिन उसका जो पूरा मुहावरा है वो तिल का ताड़ राई का पहाड़, पूरा है उसकी लाइन। अर्थात जो तिल को कभी ताड़ नहीं बनाया जा सकता है, ना वो बन सकता है, बनाया भी नहीं जा सकता ना तो बन भी नहीं सकता है, लेकिन बना देते हैं, वो है माया का रूप। वैसे राई का कभी पहाड़ होता नहीं, अगर राई को इकट्ठा करो तो भी वो फैल जाता है ना। पहाड़ को राई बना सकते हैं, ये राइट है कि पहाड़ को राई बना सकते हैं। हाँ जी चाशनी बना के डाल सकते हैं, बना सकते हैं। हाँ राई का पहाड़ बनाने हैं, अगर तेल का ताड़ और राई के पहाड़ के हिसाब से अगर देखेंगे तो अभी शास्त्रों में भी बहुत सारे उदाहरण हैं। एक तो देखेंगे तो रामायण में मंथरा, सारा रामायण की उत्पत्ति का जो बीज कौन है, छोटी सी बात थी, एक छोटी सी बात थी। महाभारत में भी देखिए, इतना बड़ा महाभारत हुआ उसका एक छोटी सी बात क्या थी, अंधे के औलाद अंधे। द्रौपदी ने दुर्योधन को यही कहा, अंधे के औलाद अंधे, और वही कितना बड़ा महाभारत बन गया, है ना। और अगर अभी वर्तमान में देखें तो क्या, राई का पहाड़ देखना हो तो जब चुनावी सीजन आता है तब एक दूसरे की क्या करते हैं, है ना, तो वो देखने का समय होता है, तो वो एक अच्छा समय है कहें कि ये उनके देखने। लेकिन ऐसे समय पे कभी भी कोई निर्णायक कदम नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि वो करने का कुछ वक्त नहीं होता है, इसीलिए चुप रह करके ही उसको पार कर सकते हैं। जिसको जो करना है वो करता रहेगा। अच्छा, ओम शांति।
हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं दाता तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है, तू ही सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं भगवान तेरी।